हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। तभी सोनल परी ने कहना शुरू कर दिया था, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हें इस वक्त मेरी बातें समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन तुम्हें मेरी सारी बातें समझनी ही होगी, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मेरी बातों का यकीन कैसे करोगे। ऐसा कहकर अचानक से सोनल परी ने अक्षत का हाथ पकड़कर सीधा अपने सर पर रख दिया था, और जैसे ही सोनल परी ने इस तरह से अक्षत का हाथ उठाकर अपने सर पर रखा, अचानक से अक्षत की आंखें बंद होने लगी थीं और उसे खुद का ही विजुअल दिखाई देने लगा था, जिस वक्त अक्षत सोनल परी को किस कर रहा था। एक बड़ी ही खूबसूरत परी, जो कि एकदम अमन की बीवी के रूप में थी, वो उसे ही घूर रही थी, और जल्दी ही वो वहां से गायब होकर सीधा अक्षत खुराना के घर पर पहुंच चुकी थी। और तभी अक्षत जल्दी जैसे ही अपने घर आया, क्योंकि उसे तो सोनल परी के आने का इंतजार था, वो नहा धोकर तभी अक्षत खुराना ने देखा कि किस तरह से उसे परी ने अचानक से सोनल परी का रूप बदल लिया था, और देखते ही देखते वो काफी कम कपड़ों में अक्षत के सामने आ गई थी। अक्षत को तो लगा था कि उसकी मोहब्बत उसकी आंखों के सामने है, तो उसे किसी तरह का कोई एहसास रहा ही नहीं था। अचानक से उसने उसे गले से लगाकर जोरों से प्यार करना शुरू कर दिया था। अब अक्षत खुराना ने जैसे ही ये देखा, उसके आगे हिम्मत ही नहीं हुई कि उसके आगे वो कुछ और देख सके। अचानक से अक्षत ने अपना हाथ सोनल परी के सर पर से हटा दिया था और उसकी ओर देखकर कहने लगा था, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कहकर उसने अपने दोनों हाथों को अपने कानों पर रख दिया था और जोरों से चीखने लगा था। तब सोनल परी अक्षत को शांत करने की कोशिश करने लगी थी और कहने लगी थी, मैं आपको इसके साथ साथ एक और बात बताना चाहती हूँ। जिस परी ने आपके साथ जिस्मानी रिश्ता बनाया है, वो परी असल में एक जादुई परी है, जिसने अमन सिंह राठौड़ की बीवी का रूप लिया था। और इतना ही नहीं, वो आपके साथ दो बार और जिस्मानी रिश्ता बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसे एक वरदान मिला हुआ है, वो किसी की भी जवानी आसानी से चुरा सकती है, और आपके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद वो एक बार आपकी जवानी के कुछ साल चुरा चुकी है, इसीलिए आप अचानक से इतनी ज्यादा बड़े बड़े से दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे सोनल परी ने उसके बदले में रंग रूप का राज खोला, अब तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, और वो पूरी तरह से हैरान हो गया था, और अचानक से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और उसके आंसू लगातार उसके गालों पर बहने लगे थे। मेरी मोहब्बत, ऐसे कैसे मैं किसी और के साथ इस तरह की कोई गलती, नहीं नहीं नहीं, ये सब कुछ जो कुछ किया है सिर्फ और सिर्फ मैंने ही किया है, प्लीज़ आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, इस तरह से मेरी मोहब्बत में अपनी मोहब्बत के साथ धोखा नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत बुरा हूँ। ऐसा कहकर उसने दो से तीन चाटे अपने मुंह पर मारने शुरू कर दिए थे। वहीं सोनल परी अक्षत खुराना की ऐसी हालत देखकर मन ही मन में तड़प कर रह गई थी और उसने अचानक अक्षत के दोनों हाथों को पकड़ लिया था और कहने लगी थी, तुम इस तरह से अपने आप को हर्ट मत करो और मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम्हारी जान अभी खतरे में है, क्योंकि जब तक काली परी अपने मकसद में पूरी कामयाब नहीं हो जाती, वो तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी, इसके लिए तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, जो मैं कहूंगी तुम्हें वो करना होगा। ऐसा कहकर सोनल परी जल्दी ही अपनी भाषा में जल्दी ही उसे कुछ समझाने लगी थी, और अचानक देखते ही देखते देखते अक्षत के चेहरे पर कुछ अलग ही तरह के भाव आ गए थे, और वो कहने लगा था, जैसे तुम कहोगे मैं वैसे ही करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर यकीन है ना, मैंने जानबूझकर कुछ भी गलती नहीं की है, जो कुछ किया है उसी ने किया है। तब सोनल ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया था और कहने लगी थी, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं, दूसरी ओर तारा परी जैसे ही नीचे आई, उसने देखा कि अमन किचन में उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था, और तब उसने जल्दी ही खुशी के साथ तारा के सामने ब्रेकफास्ट लगा दिया था, और तारा अमन से कुछ कहना चाहती थी उस वक्त, लेकिन अमन को इतने अच्छे मूड में देखकर तारा की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो उसे कुछ कह सके, क्योंकि तारा को हर हाल में अमन को काली परी के बारे में बताना था। वो अच्छी तरह से जानती थी, अगर उसने काली परी के बारे में बताने में उसने जरा सी भी देर कर दी, तो काली परी अपनी चाल चल सकती है। तभी अमन, जो कि तारा को इस तरह से खोया खोया देखकर हैरान था, कहने लगा था, क्या हुआ, तुम इस तरह से खोई खोई से क्यों हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? तभी तारा ने करना शुरू कर दिया था, वो, नहीं नहीं अमन सर, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं आपसे कुछ कह रही थी, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी, तो मैं आपको ये बताना चाहती थी कि, तभी इससे पहले, हाँ हाँ मुझे पता है, इससे पहले कि तारा बोलती, अमन बीच में कहने लगा था, हाँ हाँ मुझे पता है, मेरी बीवी एक परी है, और वो मुझे अब उड़कर दिखाने वाली है। जैसे ही अमन ने एक बार फिर तारा परी का मजाक उड़ाता हुआ लहजा यूज किया, अब तारा हैरान थी, वो सोचने लगी थी कि आखिरकार अमन को हो क्या गया है, अपनी शक्तियों के घमंड में इतना चूर हो गया है कि सामने वाले की कोई बात सुनने तक के लिए तैयार नहीं है, और सोचने लगी थी कि काश करिश्मा मॉम यहाँ आ जाए और उसके बाद वो उसे सारी बातें साफ कर दें,
क्योंकि अचानक से अगर वो इस तरह से अमन को उड़कर दिखा देती है, कोई ना कोई जादू करके दिखा देती है, तो कहीं अमन उसे गलत ना समझ ले। तो कहीं ना कहीं तारा का दिमाग जोरों से चल रहा था। वहीं दूसरी ओर अमरेंद्र जी और करिश्मा जी काफी ज्यादा परेशान हो उठे थे, क्योंकि वो मल्लिका के मृत शरीर को मुखाग्नि देने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब जब वो उसके शरीर को आग देने के लिए जाते, अचानक से उसके शरीर पर आग लगते ही अपने आप ही बुझ जाती थी और उसे मुखाग्नि दी ही नहीं जा रही थी। अब तो वो दोनों पूरी तरह से परेशान हो चुके थे, तो उन्होंने कितने सारे मंत्रों का उच्चारण भी कर लिया था, लेकिन वो मल्लिका के बुढ़िया वाले शरीर को मुखाग्नि दे ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि मल्लिका शरीर आग पकड़ ही नहीं रहा था। तब करिश्मा जी ने अमरेंद्र जी की ओर देखते हुए कहा था, मुझे लगता है कि हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम यहाँ इस जगह इस शरीर को मुखाग्नि देने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लगता है कि हमें काली शक्तियों के जंगल में जाना चाहिए। काले जंगलों में ही इसके मृत शरीर को मुखाग्नि दी जा सकती है। अब जैसे ही करिश्मा जी ने ये कहा, अमरेंद्र जी कहने लगे थे, लेकिन काले जंगल में काफी ज्यादा खतरा हो सकता है, क्या उस जगह जाना सही रहेगा? तब करिश्मा जी कहने लगी थी, आप अच्छी तरह से सोच लीजिए, क्योंकि आज तीसरा दिन पूरा होने वाला है और अभी तक पूरा दो दिन पूरे हो चुके हैं और अभी तक हम मल्लिका के शरीर को मुखाग्नि नहीं दे पाए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसको 5 दिनों के अंदर अंदर मुखाग्नि देना कितना ज्यादा जरूरी है। अब जैसे ही अमरेंद्र जी ने ये सुना, वो हैरान थी और कहने लगी थी, शायद तुम ठीक कह रही हो। एक काम करो, तुम अपना जिन अवतार ले लो
और उसके बाद अपने जिन रूप से एक तरफ मुझे और एक तरफ इस मृत शरीर को लेकर वहां चलो, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि इस वक्त अभी मेरी शक्तियां जागृत नहीं हैं। जब तक कि जिन्नातों का वंशज नहीं आ जाता, तब तक मेरे शरीर में शक्तियां नहीं आ सकती हैं। अब जैसे ही उन्होंने अमरेंद्र जी ने ये कहा, करिश्मा जी ने जल्दी ही उनकी बात मान ली थी और उन्होंने अब आंखें बंद करके कुछ कड़े मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया था और देखते देखते करिश्मा जी का शरीर पढ़ने लगा था और वो धीरे धीरे उनका शरीर किसी बड़े से विशाल पेड़ की तरह ऊंचा जितना हो गया था। अब वो उनके हाथ पांव, उनका सारा शरीर बहुत ही ज्यादा बड़ा बड़ा हो गया था, तो अब वो आसानी से एक हाथ से अमरेंद्र जी को उठा सकती थी और एक हाथ से वो मल्लिका के बूढ़े मृत जिस्म को भी उठा सकती थी। तो इसीलिए करिश्मा जी ने जल्दी ही उन दोनों के जिस्म को उठा लिया था और काली शक्तियों के पहाड़ी की ओर रवाना हो चुकी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें समझ में आ चुका था कि अगर मल्लिका के अंदर काला साया इतने दिनों से था, तो वो जरूर काले जंगलों में ही उसे मुखाग्नि दी जा सकती थी, वरना उसे मुखाग्नि इस तरह से देना पॉसिबल नहीं था। वो वहीं अमन ने जब इस तरह से सवाल किया कि तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो, क्यों तुम परेशान हो, तब तारा ने जल्दी से कहा था, नहीं नहीं अमन सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तब अमन, अच्छा आप बताइए आप क्या खाओगे? तब तारा ने बोला था, आप हमें थोड़ा सा फ्रूट कस्टर्ड दे दो। तब तारा ने जल्दी ही फ्रूट कस्टर्ड खाना शुरू कर दिया था और अमन की ओर देखकर कहने लगी थी, अमन सर मुझे आपसे कुछ कहना है, आखिरकार आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? तभी तभी अचानक तारा परी के सामने अमन बैठा बैठा कहने लगा था, तुम कहना क्या चाहती हो? कि तुम एक परी हो और इस वक्त तुम्हारी एक जुड़वा बहन परीलोक से यहाँ आ गई है, जो कि 300 सालों से कैद रही थी और परीलोक के राक्षस ने उसे तुम्हारे जिन अंश को मारने के लिए भेजा है, तुम ये कहना चाहती हो ना? अब जैसे ही अमन ने ये कहा, तारा की आंखें फटी की फटी रह गई थी और उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि अमन ने सारी बात जो कही थी वो अपनी आवाज में नहीं बल्कि एक औरत की आवाज में कही थी। वो तब तारा को समझते देर नहीं लगी कि उसके सामने इस वक्त कौन बैठा हुआ है, और देखते ही देखते काली परी, जो कि अमन के वेश में वहां बैठी हुई थी, उसने अपना रूप बदल लिया था और वो तारा परी की ओर देखकर हंसने लगी थी, और तारा परी का गुस्सा और हैरानी के मारे बुरा हाल हो गया था, और तभी उसे याद आया कि उसने अभी अभी फ्रूट कस्टर्ड खाया था, और तब काली परी तारा परी की ओर देखकर कहने लगी थी, क्या हुआ? इतने प्यार से तुम्हारे लिए मैंने ये फ्रूट कस्टर्ड बनाया है, क्या तुम खाओगी नहीं क्या? तारा परी ऑलरेडी 2 से 3 बाइट फ्रूट कस्टर्ड के ले चुकी थी और तभी उसे एहसास हुआ कि उसे जरूर फ्रूट कस्टर्ड में उसने अपना बुराई का जहर मिलाकर उसे दिया है। तब तारा परी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी और कहने लगी थी, क्या किया है तुमने मेरे साथ और क्या मिलाया है इस फ्रूट कस्टर्ड में? तभी काली परी जोरों से हंसते हुए कहने लगी थी, मैंने कुछ नहीं मिलाया है तुम्हारे वंशज को, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बुराई का थोड़ा सा जहर उसे पिलाया है। अब तो तारा परी की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था और वो गुस्से से एकदम खड़ी हुई थी और एक बार फिर वो अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करने लगी थी। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी जादुई छड़ी से काली परी पर आक्रमण करने उसे रोकते हुए कहा था,
अरे मेरी शक्ल तो देख लो, तुम्हारे प्रिय पतिदेव की शक्ल में तुम्हारे सामने आई हूँ, तो तुम क्या अपने पति पर हमला करोगी? अब तो तारा परी उसकी बात सुनने के लिए तुरंत रुक गई थी और अगले ही पल उसने उसकी ओर देखते हुए कहा था, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम लोगों के इमोशन के साथ खेलना, उनके साथ बुरा करना तुम्हें कितना ज्यादा पसंद है, लेकिन आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और मैंने गलती कर दी, मुझे तुम्हें कारावास में बंद नहीं करवाना चाहिए था। मुझे इस वक्त तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मृत्युदंड दिलवाकर अग्नि दुनिया में कैद करवा देना चाहिए था, जहां से तुम कभी भी लौट कर नहीं आती। अब तो काली पपरी ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो गई थी और कहने लगी, रोक, अपनी हद में रहो तारा, तुम इस तरह से मेरे साथ बात बर्ताव नहीं कर सकती हो। शायद तुम भूल रही हो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। तभी तारा परी ने कहना शुरू कर दिया था, तुम मेरी बड़ी बहन हो, लेकिन तुमने आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है कि मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहन कह सकूं। और तभी अचानक काली परी ने तारा परी की ओर देखते हुए कहा था, वो देखो आ गए तुम्हारे सास ससुर। अब जैसे ही अचानक से काली परी ने ये कहा, तारा ने पीछे मुड़कर तुरंत देखा था और इतने में काली परी वहां से गायब हो चुकी थी, क्योंकि अमन सिंह राठौड़ वहां आ रहा था। अब अमन, जो कि ऑफिस के लिए तैयार होने के बाद सीधा अपने मम्मी पापा के कमरे में चला गया था और वहां जाकर कुछ पल अनुष्ठान करने के बाद और ये देखने के बाद कि वो इस वक्त वो कहाँ है और कहाँ जा रहे हैं, तो वो अब तारा के पास आया था। और तारा ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा कि वहां कोई नहीं है और उसने वापस से अमन यानी के काली परी की ओर देखा, तो वो कहने लगी थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मजाक करने की? क्या तारा परी काली परी के भ्रम में अमन पर हमला कर देगी? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।